तो आप जानना चाहते हैं सत विचार यानी मौत की याद कैसे है, मौत की याद सत विचार कैसे है, ये जानना चाहते हैं। इसमें कोई आपका बोलेगा तो नहीं, तो हाँ समझना ये है कि सत विचार यानी मौत की याद। मौत की याद का सही अर्थ यही है, इस देह की मौत हो जाएगी। अब जब महाराज जी ने ये बात कही है सत विचार यानी मौत की याद, इसका मतलब जिसको इस बात का होश बना रहता है कि इस देह की मौत हो जाएगी फिर मेरा क्या होगा, जिसके अंदर ये भाव है कि इस देह की मौत हो जाएगी अर्थात मेरी मौत हो जाएगी, उसके लिए तो कोई विचार है ही नहीं संसार में, वो तो मर ही गया, फिर वो तो अपनी अज्ञानता में मर गया। हालांकि वास्तव में वो नहीं मरेगा, लेकिन अपनी अज्ञानता में तो वो मर गया, क्योंकि आखिरी श्वास तक वो यही समझता रहा कि मैं मर जाऊंगा, तो उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई, करने को कुछ बचा ही नहीं उसके पास। क्योंकि ये विचार उसके लिए है जिसको ये पता है कि देह की मौत हो जाएगी मेरा क्या होगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो सत विचार करता है। क्योंकि अब केवल सत विचार उसको बचा सकता है। तो सत तो जानते ही हैं, सत का मतलब होता है ईश्वर, और विचार का भी मतलब जानते ही हैं कि ईश्वर के बारे में विचार, क्योंकि इस सारी प्रकृति में ईश्वर एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसका नाश नहीं है और जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो परमानेंट है, स्थाई है, सर्वव्यापक है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, यहां तक कि वो मेरा निज स्वरूप है। इसका मतलब हो गया कि वास्तव में मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन अज्ञानता के कारण सारी जिंदगी मैं संसार में धक्के खाते रहा, पांच विकारों की लालसा लेकर जीता रहा, इन विकारों की पूर्ति के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा, बेचैन होकर जिया और बेचैन होकर इस देह का त्याग कर दिया। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि तू मौत की याद रख। ये देह तेरी छिन जाएगी। कौन सी देह? मानव देह छिन जाएगी। तूने यदि इसका सदुपयोग नहीं किया, आम संसारियों की नकल करके भोग इकट्ठे करता रहा और उस सुख को अपनी मंजिल बनाकर उनको भोगता रहा, तो तू पशु योनि का अधिकारी है, फिर तू पापी मनुष्य है। चाहे अपनी अक्ल से कितना भी समझता रहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने अपने कर्तव्य पालन किए हैं, लेकिन जिस मनुष्य ने भी भोगों को लक्ष्य बनाकर जीवन जिया है वो पापी मनुष्य है, क्योंकि उसने इस मानव देह का दुरुपयोग किया है। ये काम तो सारे पशु पक्षी भी करते हैं, सारी जिंदगी यही करते हैं, और एक बार भी झूठ नहीं बोलते वो। मैं तो झूठ भी बोल देता हूं, तो मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी मैंने पशु जीवन व्यतीत किया है, इस बात का होश हमको होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये बात हमारे वास्ते गुरु हमसे कह रहा है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने गुरु धारण किया है और जिसने सत्पुरुषों की बातों को समझने की कोशिश की है, उससे ये बात गुरु कह रहा है, उसके लिए कह रहा है कि मौत की याद सत विचार है। क्यों? क्योंकि मौत की याद तुझको सत की ओर ले जाती है, ईश्वर की ओर ले जाती है। और जो लोग इस विचार से गाफिल रहते हैं, इसकी याद करने की कोशिश ही नहीं करते, या इसको याद करना अपशगुन समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हम लोगों के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो मौत की याद या मौत की बात करने को अपशगुन समझते हैं। कहते हैं, ऐसी अपशगुन वाली बात क्यों करते? तो वो बेहोश बुद्धि लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी का होश नहीं। क्योंकि महाजी कहते हैं, भय से ही भाव उत्पन्न होता है। अर्थात जब मौत का भय होगा तो अपनी उन्नति का विचार आपके अंदर पैदा होगा कि मौत कभी भी आ जाएगी, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, ऐसा कौन सा जीवन जीऊं, किस प्रकार जीऊं कि ये जीवन मेरा सफल हो जाए। मौत के वक्त मुझको मानसिक क्लेश लेकर ना जाना पड़े, मौत के वक्त मेरे अंदर पछतावा पैदा ना हो कि जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं सका, मैंने ये गलतियां कर ली, मैंने वो गलतियां कर ली, लेकिन उस समय पछताने से आपका कोई लाभ नहीं। तो जीते जी जो व्यक्ति अपनी अंतिम अवस्था की याद रखता है, वो अलर्ट होकर जीता है। जैसे कि एक कथा आपने सुनी होगी या कहानी सुनी होगी, या वो सच्ची घटना भी हो सकती है, कि एक व्यक्ति अपने जीवन के प्रति बड़ा लापरवाह था और उसके जीवन के द्वारा परिवार वालों को, अन्य लोगों को कष्ट पहुंचता था। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास बैठा हुआ था या किसी महात्मा के पास बैठा हुआ था जिस पर उसका विश्वास था, तो उसको देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी 7 दिन बाद मौत आने वाली है, अब जब उसने ये बात सुनी, क्योंकि उसका उन पर विश्वास था, जैसे किसी का ज्योतिष पे बड़ा विश्वास होता है, पक्का ज्योतिषी होता है कि ये ज्योतिष जो बताएगा बिल्कुल ठीक बताएगा, और वो बता दे तो उसको विश्वास हो जाता है, उसके अंदर निश्चय हो गया कि मेरी निश्चित रूप से 7वें दिन मौत हो जाएगी। वो घर गया अपने, जो कुछ भी हरकतें करता था जिसके कारण घर वालों को परेशानी होती थी, एक एक करके सारी हरकतें उसने बंद कर दी। दुकान पर सबको गालियां देता था, कोसता था, बेईमानी करता था, धीरे धीरे सब उसने बंद कर दिया। जब उसका आखिरी दिन आया तो घर पर लेट गया प्रभु की याद करता हुआ। 7 दिन भी वो ईश्वर को नहीं भूला और जब वही महात्मा उसकी स्थिति जानने के लिए घर पहुंचे उसके, तब उससे पूछते हैं, कैसे हो, तुमने इन 7 दिनों में क्या क्या किया? जो पहले करते आए हो वही किया या कुछ उसमें परिवर्तन हुआ? अब वो कहता है कि पहले तो मैं लोगों को कष्ट देता था, मैंने 7 दिनों में किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है, पहले तो मैं भोगों की याद रखता था, पैसे की याद रखता था। इन 7 दिनों में ना मुझे पैसे की याद आई, ना भोगों की याद आई, केवल ईश्वर याद आया है। क्योंकि मुझको पता है कि आज मैंने संसार से जाना है। जब जाना है तो मैं गलत कर्म कैसे कर सकता था। तब उसने कहा, तुम्हारे सुधार के वास्ते मैंने ये बात कही थी तुमसे, आज तुम्हारी मौत नहीं होने वाली। तो विचार करके देखो, सत्पुरुष इसी बात को कह रहे हैं कि यदि तुझको मौत की याद रहेगी, इस नाशवान देह की याद रहेगी, नाशवान जीवन की याद रहेगी, इस क्षणभंगुर जीवन की याद रहेगी, तब तू इतनी लापरवाही नहीं करेगा जीवन में। तुझको नहीं पता है तुझको 1 साल भी अभी जीने के लिए नहीं मिल रहा है, या केवल 5 साल जीवन के बचे हैं, 5 साल तूने जीना है। और तू आज यदि सोच ले जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, 5 साल भी ऐसे ही जीता रहा, तू क्या लेके जाएगा संसार से? क्योंकि जितने भी कर्म किए हैं, जैसा स्वभाव तूने बनाया है, उन कर्मों का फल और अपना स्वभाव सब कुछ तू अपने संग लेकर जाएगा मन के रूप में। तन तो तेरा यहां जला दिया जाएगा, लेकिन तू अपने मन के रूप में सारी कमाई अपने संग ही लेकर विदा होगा। तो बताइए, ये मौत की याद को महाराज जी ने एक जगह कामिल गुरु भी कहा है। मौत की याद तेरा गुरु है, क्योंकि गुरु क्या करता है, शिष्य को संभालता है, और मौत भी चुप तुझको संभालती। लेकिन ईमानदारी से तुझे उसकी याद हो तो, संसार का तो उल्टा हाल है, वो मौत को भूलना चाहते हैं, इतने भोग मिल जाएं कि मौत याद ही ना आए। तो इसीलिए महाराज ने कहा है कि मौत की याद यानी सत विचार, ये हमारी जिंदगी का सत्य है। बार बार तो महाजी कह रहे हैं, प्रेमी ये देह नाशवान है, सुख परिवर्तनशील है, हर सुख दुख में बदल जाता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना लाजमी है, क्योंकि द्वंद्व रूप है। द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजें आपस में लड़ती भी हैं, एक दूसरे का निर्माण भी करती है, एक दूसरे को नष्ट भी करती है। द्वंद्व का वास्तविक मतलब यह है, दोनों में क्लेश भी होता है, एक दूसरे से लड़ती भी है और एक दूसरे का निर्माण भी करती है। जैसे घर में दो बहन भाई होते हैं ना, उनमें क्लेश भी होता है, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, एक दूसरे का भविष्य का निर्माण भी करते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। डिस्ट्रक्शन का होता है जब दो में सुख की लड़ाई होती है, ये चीज मुझको मिल जाए तुझको नहीं मिलनी चाहिए। तो सारी प्रकृति द्वंद्व रूप है और ये एक्टिविटी हर चीज में चलती रहती है। तब बताइए, जब हर चीज में यही एक्टिविटी चल रही है, तुझको चैन कैसे मिल सकता है? जरा विचार करके कर देखो, एक भी वस्तु जो आप जानते हो धरती के ऊपर या आसमान के ऊपर, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है प्रकृति में जो द्वंद्व रूप ना हो। और द्वंद्व का मतलब ही युद्ध होता है, संघर्ष होता है। तो तेरी पूरी जिंदगी एक गहरा युद्ध है जिसमें तू फंसा हुआ। अर्जुन ने तो कुछ दिन का महाभारत लड़ा था, लेकिन पूरी जिंदगी मेरी महाभारत है। इस महाभारत के युद्ध में मैं चैन की नींद सोना चाहता हूं, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और जरा विचार करके देखो, महाभारत की युद्ध भूमि में कोई चैन से सोना चाहे, वो दिन आएगा जिंदगी में उसकी? मेरी भी यही स्थिति है, इसलिए मैं चैन से सो भी नहीं पाता। सोता हूं तो बेचैनी के सपने देखना शुरू हो जाता, कर देता हूं। इस देह का होश गायब हो गया तब भी मुझको चैन नहीं, मेरी आंतरिक हालत ही है। तो इसीलिए जब तक आप इस विचार को करने के लिए या ये विचार करने के लिए मजबूर नहीं होते, कि जब मेरी ये हालत है देह की और मेरे जीवन की, तब मुझको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जिसको मौत की याद आती है वो गंभीरता से अपने जीवन के बारे में रीथिंकिंग करता है, रीप्लानिंग करता है, फिर सोचता है मैं कहाँ गलती करता रहा हूं, अब भविष्य में मुझसे गलती नहीं होना चाहिए। जब गलती नहीं होना चाहिए तो किसका पल्ला पकड़ोगे? गुरु का ही पकड़ोगे। वही ऐसा संसार में मनुष्य आपके सामने आया है जो हर गलती से आपको मुक्त कर सकता है, हर गलती से आपको ऊपर उठा सकता है और आपको हर बेचैनी से मुक्त कर सकता है और परमानेंट शांति प्रदान कर सकता है। तो गुरु आपको जीने की वो कला सिखाता है, वो पद्धति सिखाता है जिसको अपने जीवन में अपनाकर आप मौत से पहले ही मर जाते हो। इस मरने का मतलब है कि भोगों के प्रति जो आपके अंदर उत्साह है, भोगों के लिए जो जीवन जी रहे हो, वो जीवन आपका मर जाता है। सुनने में लगता होगा ये तो बड़ा दुखदाई रास्ता है, ना, ये भोग तो आपको सारी जिंदगी बेचैन रखते हैं, सारी जिंदगी पाप करवाते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन वो इसके मुकाबले में आपको आनंद के रास्ते पर डाल देता है, शांति के रास्ते पर डाल देता है, चैन के रास्ते पर डाल देता है, जो कभी भी आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। उस रास्ते का नाम ही ईश्वर मार्ग है, सत मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। और वो रास्ता बाहर जंगल से होकर, शहर से होकर, आसमान से होकर नहीं जाता, वो रास्ता आपकी देह के अंदर ही मौजूद है। इसीलिए महाजी ने कहा एक मनमुखी मार्ग है, एक गुरुमुख मार्ग है। तो मनमुख मार्ग क्या है? मन के अंदर जो पांच प्रकार की आपके अंदर वासनाएं उठती हैं, पांच विकारों की, इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, ये भोग विलास की वासनाएं, तो ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और इसके मुकाबले में जैसा कि कल प्रश्न पूछ रहे थे, निष्कामता, निर्मानता, निःचलता, उदासीनता, उदासीन, परोपकार, तो ये पांच गुण हैं जो जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली है उसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर कहीं कोई व्याकुलता ही नहीं। जो निष्काम हो गया, जिसमें कामना ही खत्म हो गई, तो व्याकुल तो हम कामना के लिए होते थे, तो व्याकुलता आपकी कहां होगी? जिसके अंदर समभाव हो गया, जो उदासीन हो गया, कैसी भी कंडीशंस हो, उसकी एक स्थिति, एक जैसी स्थिति बनी रहती है, तो व्याकुलता कहां आपकी रहेगी? जो निर्माण हो गया, जिसके अंदर मान अहंकार खत्म ही हो गया, तो कौन से नाम के लिए रोएगा? कौन उसका अपमान कर सकता है? जिसके अंदर मान का भाव ही खत्म हो गया, कौन उसका अपमान कर सकता है? और संसार में चाहे भूचाल आ जाए, चाहे सारे संसार का सर्वनाश हो जाए, उसके अंदर निश्चलता बनी रहती है, कोई हिला ही नहीं सकता उसको। संसार की कैसी भी परिस्थिति उसके मन को नहीं हिला सकती, पहाड़ की तरह से निश्चल बिल्कुल। तो बताइए, तो ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं। हमें सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसका तो केवल परोपकारी जीवन है। यदि उसके जीवन से कुछ भी, देह से कुछ भी प्रकट होगा तो परोपकार प्रकट होगा। तो ये स्थिति कैसे हो गई इसकी? क्योंकि वो मन के चंगुल से मुक्त हो गया और अंतर्यामी ईश्वर से उसका मिलन हो गया। तो इसीलिए सारी समता विलास, सारी गीता, सारे उपनिषद, सारी सत्पुरुषों की वाणी यही कला सिखा रही है आपको। ये पांच गुण आपके अंदर आ जाते हैं और पांच विकार भस्म हो जाते हैं। तो इसका स्रोत है मौत की याद। तो मौत की याद किस रूप में, कि देह किसी भी पल नाश हो सकती है, किसी भी वक्त मुझसे छीनी जा सकती है, फिर मेरा क्या होगा, इस रूप में मौत की याद। इसलिए मैंने अपनी तैयारी करनी है। इसलिए वाणी में देह को मंदिर कहा गया है। क्यों नर मोह मंदिर में सोया, जन्म अमोलक भरम में खोया। वाणी आती नहीं आती, ये मंदिर है। ये क्यों मंदिर है, क्योंकि इसमें ईश्वर बैठा हुआ है, इसलिए मंदिर है। ये उपासना घर है, ये जीव ने इस उपासना घर में रहते हुए प्रभु का भजन करना है। और मैं मूर्ख ऐसा रहा अज्ञानियों के बीच में, पल पल कर मैंने भोगों का भजन शुरू कर दिया। जिंदगी की बर्बादी के लक्षण मैंने खुद पैदा कर लिए। अभी भी मुझको होश नहीं आ रही। गुरु तो बना लिया मैंने पूर्ण, कभी सोचा नहीं मैंने कि गुरु की वाणी कह क्या। गुरु की वाणी तो मैं बहुत गाता हूं, क्यों नर मोह मंदिर में सोया, इस एक पंक्ति पे पूरी जिंदगी बीत गई, कभी मैंने विचार ही नहीं किया मैंने कह क्या रही है वाणी। ये देह मंदिर है। वाणी में महाजी के एक चीज और आता है, देह मस्जिद प्राण मुसल्ला। देह को मस्जिद कहा गया, वो भी महाजी की वाणी में कहा। तो ये पूजा घर है या भोग भोग विलास का घर है, जरा विचार करके तो देखें किस बेरहमी से इस जीवन का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कितने पाप कर चुका मैं, गुरु बनाने के बाद मैं कितने पाप कर चुका, कौन बचाएगा मुझको। गुरु की वाणी का मैंने सत्यानाश कर दिया, कुछ के कुछ अर्थ करता रहा, खुद भी भ्रमित होता रहा, लोगों को भी भ्रमित करता रहा। गुरु जैसा कह रहा है वैसा मैंने नहीं किया, फिर भी बड़े अहंकार से कहता हूं मैं प्रेमी हूं, मैं महाराज जी का शिष्य। तो अपने आप को शिष्य कहने में शर्म आनी चाहिए, जब किया ही नहीं तो शर्म तो आनी ही चाहिए। काय के शिष्य हो गए, तो कहां तुमको मौत की याद आई, कहां तुमने कभी इस बात को समझने की कोशिश की कि मौत की याद सत्विचार कैसे होता है, कभी जिंदगी में कोशिश की कि मौत की याद सत्विचार होता है। कितनी बार ये बात हमने सुनी होगी, कभी सोचने की कोशिश की। तो हमारी यही हालत है कि सत्संग हमने बहुत सुने लेकिन सोचा कभी नहीं। इसीलिए हमारी आज भी ये दुर्दशा है कि अंदर का कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। तो मौत की याद इतनी सरल बात नहीं है। गुरु के सारे ज्ञान का राज इस पर खड़ा हुआ है, इसलिए वो इसको सत विचार कह रहे हैं। जो सही रूप में मौत की याद रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर सत विचार हर समय ना बना रहे। ये नहीं कि एक कभी याद कर लिया सत विचार क्या होता, परिभाषा याद कर ली मैंने, ना ना ना, वो सत विचार अर्थात अपनी उन्नति का भाव आपके अंदर हर वक्त बना रहेगा। जिस प्रकार उस दुकानदार के अंदर बना रहा जिसको महात्मा ने बताया था तेरी 7 दिन बाद मौत आने वाली है, बस उसने इतना ही सत्संग किया उसके सामने, और कोई सत्संग नहीं किया। इस मौत की याद ने उसको पूरा बदल के रख दिया। जो पापी आदमी था, जो दूसरों को दुखी करता था, वो सीधा हो गया, लेकिन सही रूप में उसने मौत की याद की। तो महाराज जी भी इसी रूप में हमको से भी कह रहे हैं, प्रेमी तू मौत की याद कर, ये मौत की याद तेरा गुरु है, तेरा सत विचार है, तुझको ईश्वर के नजदीक ले जाएगा, संसार के मार्ग से हटाकर तुझको ईश्वर के मार्ग पर डाल देगा। तो संसार में तू कर्तव्य बोध से जिएगा, शरीर के लिए पालन करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं का सेवन करेगा, बाकी जो वक्त बचेगा, जो सामर्थ्य बचेगी, जो तेरी धन दौलत बचेगी, उससे दूसरे की सेवा करेगा। तेरे लिए बस एक ही चीज है, प्रभु की याद और निष्काम सेवा। तो इस प्रकार से मौत की याद आपको सत्विचार पैदा आपके अंदर पैदा करती है और सतमार्ग पर आपको डाल देती है, जो एक दिन आपको ईश्वर तक पहुंचा देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभूतेषु।